पञ्चत्वं थाच्चैकात्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मान् यजुषा वाग्भिः ब्रह्माण्यात्मानमव्यये त्रित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकात्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मान् यजुषाविद् ब्रह्माण्यात्मानमव्यये त्रित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकात्वे जुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मान् यजुहावीत् ब्रह्माण्यात्मानमव्यये
into the three qualities, hutva, having offered, cha,
also,
panchatvam,
five elements,
tat,
that,
cha,
also,
ekatve, in one nation,
Ajuha,
amalgamated,
Muni,
the thoughtful,
Sarvam,
the sum total,
Atmani,
in the soul,
Ajuhavi,
fixed,
Brahmani,
under the spirit,
Atmanam,
the soul,
Avyaye,
into the inexhaustible. Thus, annihilating the gross body of five elements into the three qualitative modes of material nature, he merged them in one nescience and then absorbed that nescience in the self, Brahman, which is inexhaustible in all circumstances. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. All that is manifested in the material world is the product of the Mahatattva of Yakta. And things that are visible in our material vision are nothing but combinations and permutations of such variegated material products. But the living entity is different from such material products. It is due to the living entity's forgetfulness of his eternal nature as eternal servitor of the Lord and his false conception of being a so-called Lord of the material nature that he is obliged to enter into the existence of false sense enjoyment. Thus, the concomitant generation of material energies is the principal cause of the mind's being material affected. Thus, the gross body of five elements is produced. Maharaj Yudhisthira reversed the action and merged the five elements of the body in the three modes of material nature. The qualitative distinction of the body as being good, bad, or mediocre is extinguished, and again the qualitative manifestations become merged in the material energy which is produced from a false sense of the pure living being. When one is thus inclined to become an associate of the Supreme Lord, the personality of Godhead, in one of the innumerable planets of the spiritual sky, especially in Goloka Vrindavan, one has to think always that he is different from the material energy. He has nothing to do with it, and he has to realize himself as pure spirit, Brahman, qualitatively equal with the Supreme Brahman, Parameshwar. Maharaj Yudhisthira, after distributing his kingdom to Parikshit and Vajra, did not think himself emperor of the world or head of the Kuru dynasty. This sense of freedom from material relations, as well as freedom from the material encagement of the gross and subtle encirclement, makes one free to act as the servitor of the Lord, even though one is in the material world. This stage is called the Jivan Mukta stage, or the liberated stage. Even in the material world, that is the process of ending material existence. One must not only think that he is Brahman, but must act like Brahman. One who only thinks himself Brahman is an impersonalist, and one who acts like Brahman is the pure devotee.
अनुवाद इस प्रकार है इस प्रकार पंचतत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर गुणों को अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो अक्षय है
Chakshuru Militam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha Vansha Kalpata Rubyascha Kripa Sindubhya Evasha Pratithanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vashadi Gaura Bhaktavinda
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
After the battle of Kurukshetra, the Pandavas, headed by Maharaj Yudhisthira, were personally enthroned as the king of the world by the Supreme Lord Sri Krishna himself.
Mahabharat ki Kurukshetra ki ladai hone ke baad mein पांडव जो हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं जो है पूरे पृथ्वी के राजा बनाए गए.
We should really never accept any position or proprietorship over anything unless we have the blessings of the Lord and we accept it on behalf of the Lord.
हमें कोई भी स्थिति या कोई भी संपत्ति तब तक नहीं स्वीकार करनी चाहिए जब तक कि हमें भगवान की सम्मति और आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो.
Who is the proprietor of this world?
इस दुनिया के मालिक कौन है?
Krishna has created everything. He is the proprietor of all that exists.
सब कुछ
Sarvaloka Maheshwaram. Therefore, we find that people of this world, they work very hard to gain material assets. Or in the political sphere, they campaign to get votes, to get control. Or as conquerors, they build huge, infallible armies to conquer other nations. In this way, according to our particular level, everyone is striving to get control over the resources of material existence.
ये लोग अलग-अलग तरह से कोई प्रयास करते रहते हैं. कोई जो है पद की प्राप्ति करना चाहता है, कोई वोटों के द्वारा स्थिति को प्राप्त करना चाहता है. इस तरह से लोग जो है ईश्वर बनने का प्रयास कर रहे हैं.
But the fact is that they are all thieves.
लेकिन सत्य यह है कि ये सब चोर हैं.
Because everything is the property of Krishna.
क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण की संपत्ति है.
If we want to accept anything free of karma, we have to accept the gifts of God with the blessings of God.
अगर हम कर्म के मुक्ति से कुछ चाहते हैं तो भगवान की चीज को भगवान के आशीर्वाद से स्वीकार करना चाहिए.
Without this consciousness, to think that we are the proprietor is the cause of all our suffering.
अगर हम ये मानते नहीं हैं तो हम यह बंधन का कारण बनता है.
Therefore, we find in the lives of the Pandavas the examples of true devotees.
इसलिए हम पांडवों के जीवन में देखते हैं कि भक्त का क्या व्यवहार होना चाहिए बताया गया.
They were living in the forest, although by birthright the kingdom was to be theirs.
वो जंगल में रह रहे थे, हालांकि जो जन्म से उनका अधिकार था राज्य पर.
Duryodhana usurped the kingdom.
दुर्योधन ने उनका जो राज्य है छीन लिया.
Even though Krishna personally requested him to give it back.
हालांकि कृष्ण ने खुद बोला कि इसको वापस लौटा दो.
Whatever we have, we should know that Krishna is personally requesting us to give it back.
जो भी हमारे पास है, हमको समझना चाहिए कि श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि वापस लौटा दो.
To give it back to him by using it in his service.
कि उसको जो है उसकी सेवा में लगाने के लिए.
If we don't, our fate will be similar to Duryodhana.
अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी स्थिति ऐसी होगी जैसे दुर्योधन की होगी.
So the Pandavas, after the battle of Kurukshetra, they were personally given the property of Krishna to be utilized under their care.
तो पांडवों को स्वयं श्री कृष्ण ने संपत्ति दी थी कि जिससे उनके लिए उपयोग किया जा सके.
Essentially, Krishna said, "This world is mine. I am entrusting it to you as my servants to take care of."
वो बोले कि ये दुनिया जो है मेरी है और मैं आपको सौंप रहा हूँ कि आप इसका ख्याल रखो मेरे सेवक के रूप में.
And Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula, Sahadev, Draupadi, they had no attachment to anything except the service of the Lord.
ये पांचों पांडव द्रौपदी को भगवान की सेवा के अलावा और कोई आसक्ति नहीं थी.
The mother of the Pandavas prayed, Janmaishwarya Shruti Shibir Edamanamata Puman Naivarhati Vadatum Vaitvam Akinchana Gocharam. That the greatest disqualifications for approaching Krishna are too much wealth, too much education, a high birth, and physical beauty.
कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बाधा है कि बहुत ज़्यादा संपत्ति होना, बहुत सुंदरता होना, बहुत बड़ा जन्म होना और बहुत ही ज़्यादा विद्या होना, ये चार चीज़ें बाधा हैं.
Because our nature is when we have these things too much, we become infatuated by them.
स्वभाव ये है कि जब हमारे पास ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो हम इसके नशे में फंस जाते हैं.
And it becomes almost irresistible
और
to give up the sense of proprietorship over them.
और उसके ऊपर जो मालिकपना है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है.
It's not so hard for a beggar to give up a roti.
एक भिखारी के लिए एक रोटी का त्याग करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है.
Because he has very little and he knows he can get it without too much difficulty back.
क्योंकि उसके पास थोड़ा सा ही है, उसको मालूम है कि बड़ी आसानी से मिल सकता है.
But for a wealthy man or woman who has tremendous amount of influence, who has tremendous amount of popularity and prestige, who has enormous amounts of wealth, the temptation of having all these things, the fear of losing them, the facility of enjoying them is so difficult to overcome, it is almost impossible.
लेकिन जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है उसके लिए जो है प्रलोभन को त्याग करना, उसको भोग करने का, और ये चिंता कि ये खो दिया जाएगा, ये देना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है.
Therefore, that person is trapped in illusion.
इसलिए वो माया में फंस जाता है.
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्योश्चैव सर्वं भाग इत्यंगना. All opulence is the property of Krishna because he is the source of all opulence.
सारे ऐश्वर्य जो है श्री कृष्ण की संपत्ति है क्योंकि सब उसी से आ रहे हैं.
To the degree we are attached to opulence for our own personal sense enjoyment, we cannot glorify Krishna.
जितना हम इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हैं उतना हम कृष्ण का गुणगान नहीं कर सकते.
What are the opulences? One is wealth.
ऐश्वर्य क्या है? पहला है संपत्ति.
To the degree we are attached to our own wealth, we cannot glorify Krishna as the supreme proprietor of everything.
जितना हम अपने खुद की संपत्ति से आसक्त हैं उतना ही हम कृष्ण का गुणगान नहीं कर सकते कि सबके मालिक के रूप में.
By calling anything our own, we are minimizing his position.
अगर हम कोई छोटी सी चीज को भी अपना बता रहे हैं तो हम उनकी स्थिति को गिरा रहे हैं.
Beauty. To the degree we are attached to being seen as very beautiful, to that degree you cannot see the beauty of Krishna.
जितना हम आसक्त हैं कि अपने आप को सुंदर दिखाने में उतना ही हम कृष्ण की सुंदरता नहीं देख पाते.
To the degree we enjoy being famous, we cannot glorify the fame of Krishna.
जितना हमारे अंदर इच्छा है कि यश प्राप्त करने के लिए उतना हम कृष्ण को यशस्वी के रूप में नहीं देख सकते.
To the degree we think we are very learned and highly educated, we cannot hear the pure message that is being spoken by Krishna.
जितना हम समझते हैं कि हम बहुत विद्यावान पढ़े लिखे हैं उतना ही हम श्री कृष्ण के विशुद्ध संदेश को स्वीकार नहीं कर पाते.
To the extent we are very proud of being very strong and very powerful, to that degree we cannot seek shelter of the protection of Krishna.
जितना हम अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं उतना ही हम श्री कृष्ण की सुरक्षा को जो स्वीकार नहीं कर सकते हैं.
And to the degree we are proud of being very renounced, very strict in our vows, to that degree we renounce our relationship with Krishna.
जितना ज्यादा हमें अभिमान होता है कि अपने वैराग्य का उतना ही हम जो है श्री कृष्ण के प्रति अपना संबंध का त्याग कर रहे हैं.
So devotees must think themselves very humble and really strive to give all glory, all credit to Krishna and utilize whatever assets he has given us in his loving service.
भक्त को जो है अपने आप को बहुत ही नम्र मानकर जो भी भगवान ने दिया है उसको उनकी सेवा में लगाना चाहिए.
So Maharaj Yudhisthira, he had control over the entire planet Earth.
महाराज युधिष्ठिर का पूरे पृथ्वी लोक पर आधिपत्य था.
One day Arjuna left Hastinapur to go to Dwarka.
एक बार अर्जुन जो है हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका की ओर चल पड़े.
And he remained away for a long time.
और बहुत समय के लिए वो वापस नहीं आए.
Yudhisthira Maharaj and Bhima were very concerned. What is the delay for Arjuna's return?
तो युधिष्ठिर और भीम को बहुत चिंता हो गई कि अर्जुन वापस क्यों नहीं आए.
During the time they were seeing so many inauspicious signs all around them.
और वो देख रहे थे कि आसपास जो है बहुत अमंगलकारी लक्षण चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे.
Such inauspiciousness cannot exist while Krishna is living on the planet.
और ऐसा जो अमंगल है जब कृष्ण धरती पर हैं तब वो नहीं रह सकते.
So they became very concerned, but they weren't willing to accept the fact within their heart that Krishna could have possibly left them.
तो बहुत चिंतित हो गए, लेकिन अपने हृदय में वो ये बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि श्री कृष्ण जो है धरती छोड़ कर जाए।
Arjuna returned.
Arjun लौट कर आए।
But his complexion was white, and there were tears brimming from his eyes.
उनका रंग जो सफेद पड़ गया था, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे।
He was beside himself in grief.
वो बहुत बड़े दुखी नजर आ रहे थे।
And after Yudhisthira inquired from him why his position was like this, Arjuna explained that the Lord of our life, our most intimate friend, Lord Sri Krishna has left this world.
उन्होंने समझाया कि जो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं श्री कृष्ण, वो धरती छोड़कर चले गए हैं।
And along with him he has taken his whole Yadu dynasty.
और अपने पूरे यदुवंश को भी साथ में ले गए हैं।
What reason do we have any longer to live?
तो हमें जीने का कारण क्या हो सकता है?
Arjuna could not even function. He was so depressed by the departure of Lord Krishna. But upon remembering the instructions that Krishna gave him in Gita, he came back to life and again was able to continue on.
अर्जुन जैसी स्थिति हो गई कि वो कार्य भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गीता के संदेश को याद करने के बाद वो फिर उनमें पुनर्जीवन की शक्ति आ गई।
Because the word of Krishna is non different than Krishna himself.
क्योंकि कृष्ण के शब्द और कृष्ण अभिन्न हैं।
But still the Pandavas, they were personal associates of Krishna.
लेकिन फिर भी पांडव जो है भगवान के निजी सहचर थे।
And Yudhisthira Maharaj, he was thinking, without Krishna, I see nothing in anything of my kingdom.
और युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि बिना कृष्ण के मैं अपने राज्य में कुछ नहीं देख पाता।
I don't want my throne. I do not want all my armies. I don't want my billions and trillions of rupees of wealth. I don't want my crown, or I don't want all my millions upon millions of servants who love me so dearly. I don't even want my family members without Krishna.
बिना श्री कृष्ण के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा संपत्ति, मेरे सेना, मेरा राज्य, मुझे अपना परिवार भी नहीं चाहिए बिना श्री कृष्ण के।
So Yudhisthira Maharaj decided that there was no reason to live without Krishna.
Yudhisthira Maharaj ne nischay kar liya ki Krishna ke bina jeene ka koi labh nahi hai.
And also Maharaj Yudhisthira noticed that after Krishna left the planet, the age of Kali came in full strength in the world.
और उन्होंने ये भी देखा कि जब कृष्ण धरती को छोड़कर चले गए तो कलयुग पूरी शक्ति के साथ धरती पर प्रवेश कर गया।
And Maharaj Yudhisthira couldn't bear to see how the people all over the world were so much being entrapped by the desire for sense enjoyment by the influence of Kali.
वो ये बात को सहन नहीं कर पाए कि कैसे लोग जो है कलयुग के प्रभाव से भौतिक इच्छाओं के चंगुल में फंस रहे हैं।
He could not bear to see the suffering and the illusion of others.
वो दूसरों के दुखों को सहन नहीं कर पाए।
And he could not bear to be without his Lord.
और वो भगवान के बिना नहीं रह पाए।
So feeling the intense grief of separation, Maharaj Yudhisthira, he gave over the entire kingdom to his grandson, Maharaj Parikshit.
और ये सोचने के बाद उन्होंने अपना पूरा राज्य जो है अपने पोते परीक्षित महाराज को सौंप दिया।
And then he gave the holy city of Mathura to Lord Krishna's personal great grandson, Vajra.
और जो मथुरा का जो शहर है वो कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को सौंप दिया।
And then Yudhisthira Maharaj gave up every drop of his wealth, everything.
और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने अपना पूरा राज्य जो है सौंप दिया।
He just wore a torn loincloth.
और बस सिर्फ फटे हुए कपड़े पहने।
And he had a little stick.
और एक छोटी सी लकड़ी थी।
And he left his kingdom with nothing but that.
और उसके अलावा कुछ नहीं था, सब त्याग दिया।
And he went to the Himalayas to perform tapasya in order to leave this world in full Krishna consciousness.
और वो हिमालय में गए तपस्या करने के लिए, अपना जीवन कृष्ण भावना में बिताने के लिए।
We find in society today that when a man is successful, even when they're very old, they just don't want to give up their control and power.
हम देखते हैं कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो बहुत बड़ी बुढ़ापा आने पे भी वो अपना राजगद्दी या अपनी स्थिति को स्वीकार छोड़ना नहीं चाहते.
According to the Varnashram system, which has been created by Krishna, Chatura Varna Mayastris Danguna Karma Vibhagasha, when a man is 50 years old and his children are basically grown up, he's supposed to turn everything over to them.
वर्णाश्रम सिद्धि के अनुसार जब व्यक्ति की उम्र 50 साल हो जाती है उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप देना चाहिए.
And he and his wife are simply supposed to engage in spiritual activities together.
और वो और उसकी पत्नी जैसा कुछ आध्यात्मिक कार्यों में लगाना उनका कर्तव्य होता है.
And by the time a man is 75, he's supposed to completely detach himself from absolutely every connection to anything material in this world.
और जब तक उसकी उम्र 75 साल हो जाती है तब तक उसको सब किसी भी प्रकार का कोई भौतिक जो है आसक्ति नहीं रखना चाहिए.
And live completely at the mercy of the Lord.
और पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए.
This system is ordained by Krishna for all human society.
ये जो समाज मानव समाज के लिए भगवान ने ऐसा तरीका बनाया है.
But how many people at the age of 50 are willing to turn anything over?
लेकिन कितने लोग हैं जो कि 50 साल की उम्र में कोई भी चीज सौंप सकते हैं?
We see politicians in America. Just a few years ago, the president of the United States was about 75 years old.
हम अमेरिका में देखते हैं कि कुछ साल पहले जो प्रेसिडेंट थे वो 75 वर्ष की उम्र के थे.
The man should have given up everything 25 years ago.
उसको 25 साल पहले सब कुछ त्याग कर देना चाहिए था.
He was supposed to be a sannyasi.
उसको सन्यासी बनना चाहिए.
But yet he couldn't give up his political power.
लेकिन फिर भी वो अपनी राजनीतिक जो स्थिति थी उसका त्याग नहीं कर पाए.
In every nation it is like this.
हर देश में ऐसा देखा जाता है.
The nature is that the younger generation has younger ideas which are necessary for the progress of a nation or a corporation or wherever it may be.
ऐसा देखा जाता है कि जो जो नई पीढ़ी है उसके पास नए नए विचार होते हैं कि कैसे देश को या समाज को चलाना है.
And they have the enthusiasm. They should be given all the power.
उनके अंदर उत्साह है तो उनको सब कुछ जो है दे देना चाहिए उनको राज्य.
And when the people who have meant to be retired long ago, when they hold the power, it creates a block in the progress of whatever the nation or the corporation may be.
और जब ऐसे लोग अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं तो देश की प्रगति जो है वो रुक जाती है.
And it also creates terrible civil unrest because there becomes a generation gap of conflict between two views.
और उसमें सामाजिक रूप से भी बहुत अस्थिरता आ जाती है क्योंकि दो पीढ़ियों के बीच में विचारधारा की मतभेद होता है.
It's like in Japan, the emperor was like in his 80s or something.
जैसे जापान में जो उनके राजा हैं वो 80 साल की उम्र के करीब.
And his ideas were completely irrelevant to the modern world.
और उनके विचार जो है आधुनिक समाज के लिए बिल्कुल अयोग्य
हैं. The young generation was revolting, wanting to get their ideas.
इसीलिए जो नौजवान पीढ़ी है वो इस बात का विरोध कर रही थी क्योंकि अपने विचार देना चाहती
थी. And the only way he could stay in power was just to start murdering and arresting the young people.
और एक ही तरीका था उसके लिए स्थिति में रहने के लिए कि जो नौजवान लोग हैं उनको गिरफ्तार करना और उनका खून कर देना.
This just happened a few years ago, you all know.
आप सबको मालूम होगा ये कुछ साल पहले ही ऐसा हुआ था.
So we can see on every level, physical, social, spiritual, if we follow the design of how society should be given by Krishna, everything becomes auspicious and dynamic.
हम देखते हैं कि हर स्थिति में जो अगर हम कृष्ण के निर्देश को पालन करते हैं तो सब चीज़ जो है मंगलकारी हो जाता है.
But due to material attachment, in this age of Kali, practically no one is willing to follow Krishna's principles.
लेकिन भौतिक आसक्ति के कारण कोई भी व्यक्ति जो है कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता.
And therefore there is great chaos.
इसलिए बहुत जो है अनेक प्रकार के विभ्रमता हो रही है.
But Yudhishthira Maharaj, he gave everything over to his children and grandchildren because he knew that it was the will of Krishna.
लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ अपने पोतों को और पुत्रों को सौंप दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा है.
And this also shows the nature of the love of a devotee for the Lord.
और ये बात भी बताता है कि भक्त का कैसे भगवान के प्रति प्रेम है.
चैतन्य महाप्रभु prayed, युगायतम निमेषेना चक्षुषा प्रवृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमः. That my dear Lord, in separation from you, I am seeing this whole universe as nothing but a dreary, terrible void.
चेतन महाप्रभु बोलते हैं कि आपके विरह में मुझे पूरा जगत जो है शून्य नजर आ रहा है.
A devotee who is always seeking Krishna can find no purpose to life without Krishna.
जो एक भक्त जो है जो कृष्ण की तलाश में है उसको कृष्ण के बिना कोई जीवन में ध्येय दिखाई नहीं पड़ता.
Similarly, Maharaj Yudhisthira, in the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu, was seeing his whole royal court, his beautiful wife, and everything like a desert, like a void, because Krishna was gone.
उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं उनका पूरा राज्य, उनकी पत्नी, सब कुछ जो है बिना कृष्ण के सब शून्य नजर आ रहा है क्योंकि कृष्ण चले गए.
So it is being explained here how Maharaj Yudhisthira, according to the mystic yoga process, was performing the path of bhakti.
यहाँ पर बताया गया है कि कैसे योग की विधि के द्वारा युधिष्ठिर महाराज भक्ति कर रहे हैं.
Krishna says, "Bhaktya mam api janati yavan yashashmitatvata." It is an eternal principle at all times that only by bhakti can we approach Krishna.
ये एक नित्य सिद्धांत है हमेशा के लिए कि सिर्फ भक्ति के द्वारा हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं.
But we must understand that in the different ages there are different processes of practicing bhakti.
लेकिन हमें समझना चाहिए कि अलग-अलग युगों में अलग-अलग तरीके होते हैं भक्ति का अभ्यास करने के लिए.
For instance, in Satya Yuga, the recommended yuga dharma was silent meditation.
जिस तरह से सत्ययुग में हम देखते हैं कि युग धर्म है कि मौन पूर्वक ध्यान करना.
And complete abstinence from any material sense enjoyment.
और पूर्णतः जो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो छोड़ देना.
But the way they did it was with devotion. They would merge their consciousness in completely meditating on the Paramatma, the Supreme Lord of their heart.
और वो इस तरह से कर पाए कि पूर्ण रूप से अपने हृदय में परमात्मा है उनकी ओर ध्यान करते हुए.
And in their meditation, they were offering their entire consciousness in love at the feet of Sri Paramatma Krishna.
और उस ध्यान में जो है अपनी पूरी चेतना को यह परमात्मा के चरणों में अर्पण कर रहे हैं.
So it was bhakti. It was not some impersonal process.
इसलिए वो भक्ति है, वो कोई निर्विशेषवाद का कोई तरीका नहीं है.
And similarly, in the Treta Yuga, when people would perform yajna, they would perform these grand yajnas, but they would be constantly chanting the name of Krishna, and the whole yajna was simply for the pleasure of Krishna. It was bhakti.
इसी तरह से त्रेता युग में भी जब यज्ञ करते हैं तो भगवान कृष्ण का नाम लेते रहते हैं और पूरा यज्ञ करते हैं वो भी एक भक्ति कहलाया जाता है.
And in the age of Dwapara Yuga, people would worship the beautiful form of Krishna or Narayan in the temple, offering all of the proper ingredients and paraphernalia for his pleasure through bhakti.
उसी तरह से द्वापर युग में जो है मंदिर पूजा के द्वारा सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो है भगवान को भक्ति में अर्पण की जाती
है. And in the age of Kali, the only process that anyone is qualified to perform is with love and devotion to chant the Lord's holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
कल युग में तो एक ही तरीका है कि हम सब लोग कर सकते हैं वह कि प्रेम और भक्ति से भगवान के नाम को पुकारना.
We find that there has always been an impersonalistic class of transcendentalists in all ages who either meditated, performed yajnas, did temple worship, or even chant the holy name of the Lord with the idea of wanting to become one with God or wanting to develop mystic potencies. So it is not simply the performance of the technique, but if we want to approach Krishna, we have to perform it in the mood of service, in the mood of devotion, realizing our eternal position as his part and parcel and his eternal servant.
तो हम देखते हैं कि हर समय निर्विशेषवादी भी होते हैं जो कि ध्यान भी करते हैं या कीर्तन भी करते हैं, लेकिन अगर हम जो है भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं और उस भक्ति की भावना से वो विधि को अपनाना चाहिए.
So Maharaj Yudhisthira, we are reading today, he was such a highly qualified personality that he performed the incredible mystic feat of reversing the whole process of material creation.
और हम देख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर वो ऐसी चीज कर रहे हैं कि जो सृष्टि की रचना का तरीका होता है उसको बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं.
Because material creation has been set in motion by Mahavishnu through his glance into the and the creation of Mahatattva by first creating the subtlest elements. First the Mahatattva, then the false ego, and then ether, then air, then fire, then water, then earth.
तो ये जो सृष्टि की रचना है वो महाविष्णु द्वारा की जाती है उनकी दृष्टि के द्वारा और महत्वत्व से पहले जो है आकाश फिर हवा फिर इस तरह से जो है पृथ्वी ये सब पांच तत्वों को बनाया जाता है.
In this way he facilitates each jivatma a material gross and subtle body.
इस तरह से हर जीवात्मा के लिए एक सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर देते हैं.
But Maharaj Yudhisthira by his developed consciousness was able to merge the earth element of his body into water, the water element into fire, the fire element into the air, air into ether, ether into the false ego, and the false ego, he merged it back into the Mahatattva, and then merged that back into the loving service of the Lord.
लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनकी दक्षता से वो अपने पृथ्वी अपने शरीर के तत्वों को पृथ्वी को जल को अग्नि में अग्नि को वायु में वायु को आकाश में और आकाश से फिर मिथ्याहंकार और मिथ्याहंकार से ये अंत में ब्रह्म में लीन कर देते हैं भक्ति के द्वारा.
But I think this will be very difficult for you to do.
लेकिन हमारे लिए ये करना बड़ा मुश्किल होगा.
Therefore Chaitanya Mahaprabhu so kindly he said you just chant Hare Krishna and I will perform all these other details on your behalf.
चेतना प्रभु ने बोला है कि आप सिर्फ हरे कृष्णा कीर्तन करिए और ये सब मैं कर लूंगा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम. श्री चैतन्य महाप्रभु एंड हिज एसोसिएट्स दे हैव टॉट अस दिस वेरी मूड that we are witnessing in the life of Yudhisthira and Arjuna, the mood of cultivating the feelings of separation from the Lord while living in this world.
Chaitanya Mahaprabhu ki jo bhavna hai, wo Chaitanya Prabhu ne Yudhisthira Maharaj ki jo bhavna hai, usse humse kaise jeevan batana hai, wo hume siklaya hai. Bhagwan se viraha.
Srila Prabhupada explained that the genuine tears of the heart in separation from the Lord is the water that makes our love of Krishna, the plant of our love of Krishna grow.
Prabhupada ji bata rahe hain ki ye jo ashru hote hain bhagwan ke virah ke wahi hamare jo paudha hai bhagwat prem ka usko badhate hain.
And we never find Gaudiya Vaishnava acharyas bragging to people that I know Krishna, I've seen Krishna, I have Krishna.
हम कभी नहीं देखते कि वैष्णव आचार्य कैसे रहे हों लोगों को कह रहे हों कि मैंने कृष्ण को देखा है कृष्ण को पा लिया है.
Because anybody can say that.
क्योंकि ऐसा तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है.
Therefore, the Gaudiya Vaishnava acharyas always presented their mood in separation from Krishna.
इसलिए गौड़ीय वैष्णव आचार्य अपना भावना जो है भगवान से विरह में ही बिताते हैं.
That I don't have Krishna. I'm so fallen. I'm only longing for the day that I can meet him.
वो यही कहते हैं कि मेरे पास कृष्ण नहीं है मैं इतना पतित हूँ मैं वो इनका इंतजार कर रहा हूँ कि जब कृष्ण मुझे मिले.
This is the mood of the Gaudiya Vaishnavas.
ये गौड़ीय वैष्णव की भावना रहती है.
हे राधे ब्रज देव के चललिते हे नंद शूनो कुताहा. The six Goswamis of Vrindavan, although they were personally having darshans with Radha and Krishna, they never presented, "Oh, I had darshan with Radharani or Krishna." No, they were roaming through Vrindavan. Radharani, where are you? Oh, Krishna, son of Nanda Maharaj, where are you? Are you at Govardhan? Are you under the Bamsiva tree? Are you on the bank of the Jamuna? In this way, they lived their whole lives in Braj Bhumi.
तो जो गोस्वामी हैं, हालांकि उनको राधा कृष्ण के जो है इतने वो करीब थे, फिर भी वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे कहाँ मिल गए हैं. वो ढूंढते थे कहाँ हैं राधे, कहाँ हैं कृष्ण, कहाँ गोवर्धन में हैं, कहाँ राधा कुंड में हैं. इस तरह से वो भगवान की विरह भावना को बढ़ाते रहते थे.
They were teaching society how to love Krishna in the purest and highest way of separation.
वो समाज को सिखा रहे थे कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना है. सबसे ऊंचा जो स्तर है वो विरह भावना में.
And even Chaitanya Mahaprabhu, who was Krishna in the mood of Srimati Radharani, one day, it is explained that Lord Chaitanya, he was walking through Navadvip Dham, and some atheistic people approached him.
एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जा रहे थे और कुछ नास्तिक पुरुष ने उनके पास है नवद्वीप धाम.
And they began to very sarcastically criticize him for conducting the loud chanting of the holy names of the Lord.
सब लोग जो है उनकी निंदा करने लगे कि आप ये जोर से कीर्तन करते हैं भगवान के नाम.
They were saying, "What do you hope to gain by all this loud chanting of the holy names?"
कहने लगे कि उच्च संकीर्तन से आपको क्या प्राप्त होगा.
You're keeping everybody awake at night.
सबको रात को आप जागृत करते हैं.
Disturbing us so much.
हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं.
And besides that, there are so many Muslim soldiers, and the king of the Muslims, he's going to arrest you.
और कई मुस्लिम सैनिक हैं और जिनका राजा है वो आपको गिरफ्तार करने वाला है.
Because you're creating such a disturbance.
क्योंकि आप जो है इस तरह से उपद्रव पैदा कर रहे हैं.
And Lord Chaitanya said, "Oh, this is very good." He said, "Because I have so many things I want to tell people, but nobody ever asks me any questions anymore."
बोलते मेरे को तो लोगों को कई चीजें बतलानी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति प्रश्न ही नहीं पूछ रहा.
So if the king arrests me, if he asks me any questions, then I can preach Krishna katha to him.
अगर राजा मुझे गिरफ्तार कर लेगा, फिर मुझे प्रश्न पूछेगा, तो मैं कृष्ण व्रत कथा प्रचार कर सकूं.
They said he will not ask you those kinds of questions.
बोले वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे.
So Lord Chaitanya just walked away from these atheists.
इतना अब बस वहां से आगे निकल गए.
And he went to the house of Srivas Pandit.
और श्रीवास पंडित के घर में गए.
And they began kirtan.
और वहां पे उन्होंने कीर्तन शुरू किया.
And Mahaprabhu, although the kirtan was so wonderful, he was very depressed.
हालांकि कीर्तन बहुत अच्छा था, लेकिन महाप्रभु बड़े दुखी थे.
He said, "I am not feeling any love of Krishna."
वो बोलते हैं कि मेरे को कोई कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा.
I'm not even feeling any ecstasy in hearing and chanting the holy names.
मुझे भावीयता का भी अनुभव नहीं हो रहा भगवान के श्रवण कीर्तन.
This must be because I associated with materialistic people today. Therefore, Krishna has taken away his mercy from me.
इसका कारण यही होगा कि मैंने भौतिकवादी लोगों का संग किया है, इसलिए कृष्ण ने यह आस्वादन मुझसे छीन लिया है.
And I am feeling no ecstasy or love.
मुझे कोई प्रेम या भाव का अनुभव नहीं हो रहा.
And Advaita Acharya, he saw Mahaprabhu and he said that you are giving your love to the untouchable people. You are giving your love to the laborer class. You are giving your love to the most sinful. You are giving your love to everybody. But to Srivas and myself, you are not giving your loving service.
तो वो बताने लगे कि देखो आप अछूत लोगों को जो है अपना प्रेम दे रहे हैं, आप जो है श्रमिक लोगों को प्रेम दे रहे हैं, लेकिन आप जो है मुझे यानी श्रीवास को और अद्वैत को ये सेवा प्रेम में नहीं दे रहे.
The reason he was saying this is because of all the lesser types of people in society. He was giving them the chanting of the holy names and he was allowing them to serve him and worship him.
क्योंकि जो ये जो नीचे जाति के लोग थे उनको वो भगवान का नाम दे रहे थे और उनको सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे थे, पूजा करने का.
But because Srivas and Advaita were considered senior by him, he would rarely ever allow them to serve him or even glorify him. Rather, he would always aspire to serve them.
और क्योंकि श्रीवास और अद्वैत उससे ज़्यादा जो है सीनियर थे, इसलिए वो कभी उनका गुणगान सुनते नहीं थे, बल्कि खुद उनका गुणगान करते थे और उनकी पूजा करते थे.
Because Advaita Acharya was the god brother of Mahaprabhu's guru, Lord Chaitanya would always offer him all respect, and sometimes he would forcibly touch Advaita's feet.
क्योंकि अद्वैत आचार्य उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, इसीलिए वो जो है उनको सब आदर देते थे और कभी कभी जबरदस्ती उनके पैरों को छू देते थे.
So Advaita Acharya was saying, "You are giving everyone the chance to love you and serve you except me."
तो अद्वैत आचार्य बोले थे कि सबको अब अवसर दे रहे हो प्रेम करने का, सेवा करने का, खाली मेरे को ही नहीं दे रहे.
And today you're feeling no love because I'm sucking love from you.
और तुम्हें आज प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि सारा प्रेम जो मैं छीन रहा हूँ.
He was just joking.
वो इस तरह से मजाक कर रहे थे.
But Lord Chaitanya was feeling so genuinely that he had no love for Krishna that he just without saying anything to anyone, he walked out the door. And he was in a very, very grave mood. And Lord Nityananda Prabhu and Haridas Thakur went running after him. They saw that the Lord was in such feelings of separation, they didn't know what he would do. So Mahaprabhu walked right to the river Ganges and jumped in to drown himself. And seeing that he wasn't swimming like usual, he was sinking, immediately Nityananda Prabhu jumped in and grabbed him by the hair.
और देखा कि वो तैर नहीं रहे थे बल्कि नीचे डूब रहे थे तो नित्यानंद प्रभु गए और बाल से उनको खींच लिया
and Thakur Haridas jumped in and grabbed him by the feet
और हरिदास ठाकुर भी छलांग लगाए उन्होंने उनके पैर पकड़ के ऊपर निकाला
and they brought him back to the bank of the Ganges
तो गंगा जी के तट पर उनको वापस लेकर आ गए
and Chaitanya Mahaprabhu who was trembling and weeping in ecstatic love he chastised them
चेतन प्रभु कांप रहे थे रो रहे थे उनको डांटने लगे
he said why did you save my life
बोले मेरे जीवन को तुमने क्यों बचाया
He said, I don't want to live in this world anymore because I have not even a drop of love of
Krishna.
If I had even one drop of love of Krishna, I would have died in separation from him. But the fact that I am still living means I have not even a drop of love for him. And what is the use of this life without loving Krishna?
बिना कृष्ण प्रेम के मेरे जीवन का क्या उपयोग है?
Why did you not permit me to end my life?
आपने मेरे को मेरे जीवन अंत करने के लिए क्यों नहीं करने दिया?
Of course. That he has taught us all to cultivate.
लेकिन हम ही समझ सकते हैं कि विरह की भावना जो हमें बढ़ानी चाहिए.
Chaitanya Mahaprabhu appeared with his four intimate associates.
It's
called the Panchatattva.
इसको पंचतत्व कहते हैं.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nithyananda Sri Advaita Gadadhara Shivasri Gaurabhakti. And all of these five forms of the Supreme Personality of Godhead that appeared simultaneously, they all assisted in exhibiting the proper approach to the Lord in separation.
और ये सब जो है ये चार जो पंचतत्व आए वो ये दिखाने के लिए कैसे भगवान को जो है पास पहुंचा जा सकता है
श्रीमती राधा रानी personally in her full-fledged opulence appeared as Gadadhar Pandit
श्रीमती राधा रानी व्यक्तिगत जो है गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई
in fact today is the appearance day of Gadadhar Pandit
आज जो है गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है
we can speak for long time, but I would like to just speak briefly about the nature of Gadadhar Pandit's mood of separation from the Lord.
ऐसे तो हम बहुत बोल सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए गदाधर पंडित की विरह भावना के बारे में चर्चा करें।
It is very much in line with the verse that we are reading today.
और वो बहुत कुछ आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित ही है।
Gadadhar Pandit appeared in Navadvip Dham as the son of Madhava Mishra.
माधव मिश्र के पुत्र के रूप में गदाधर पंडित इस धरती पर अवतरित हुए।
He was a very learned and pure Brahmin devotee of the Lord.
वो भगवान के बहुत ही विद्वान और ब्राह्मण परिवार में थे।
And Gadadhar Pandit was just about the same age exactly as Sri Chaitanya Mahaprabhu.
गदाधर पंडित की उम्र जो है चेतना प्रभु के बराबर थी।
And from their earliest childhood, they were best of friends.
और बचपन से वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे।
But in their early years, Nimai Pandit was very restless and very much enacted the leela of being a restless child and later on a very learned scholar and teacher.
लेकिन बचपन में जो है वो बहुत ही चंचल थे और ये बाद में वो शिक्षक बन गए.
But Gadadhar Pandit, from his very birth, he was always completely humble. Completely obedient, very devoted and renounced, and he wanted to do nothing but hear and chant the glories of the Lord and associate with the Lord's devotees.
राधा पंडित जो है वो शुरू से ही बहुत नम्र थे और वो और कुछ चाहते ही नहीं थे, सिर्फ वो भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहते थे।
Sometimes Nima and Pandit would challenge Gadadhar and the other devotees with all sorts of very difficult material riddles.
कई बार जो है Nima Pandit इस समय Gadadhar Pandit को challenge करते थे कोई भौतिक question के बारे
में. And no one could possibly defeat him.
और कोई व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता.
So the devotees, although they loved him so dearly, they would often try to avoid him.
हालांकि भक्त उससे बहुत प्रेम करते थे लेकिन फिर भी उनसे यह दूर भागना चाहते थे.
This itself, even in those days, before the Lord reveals his Sankirtan Leela, or reveals himself to be God, he was merging the devotees in feelings of separation.
तो संकीर्तन लीला आरंभ करने से पहले ही भगवान जो अपने भक्तों को इस विरह की भावना में डाल रहे थे.
Because they wanted to avoid him because he kept dragging their minds into material debates, but at the same time, in their hearts, they were so attracted by his beauty, and they loved him so much, they couldn't be with him and they couldn't be without him.
So, लेकिन मन से जो है इनका जो है इनकी सुंदरता से इतने आकर्षित होते थे कि वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और वो उनके साथ भी नहीं रहना चाहते थे और उनसे दूर भी नहीं रह पाते.
But after Chaitanya Mahaprabhu met with Ishvara Puri, actually, the first time Chaitanya Mahaprabhu met with Ishvara Puri was when Ishvara Puri was visiting Navadvip for several months.
प्रथम बार जो है जब ईश्वर पुरी नवदीप में आए हुए थे कई महीनों के लिए उस समय चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले.
Gadadhar Pandit, he was very close with Ishvara Puri. Every day he would spend practically the whole day in the association of Ishvara Puri, just humbly asking him to recite the beautiful teachings and glories of Lord Krishna.
Gadadhar Pandit jo hai Ishvara Puri se bahut hi nikat the aur pura din jo bitate the unse poochte the bhagwan ke gunagan karne ke liye.
And later when Mahaprabhu took initiation from Ishvara Puri, he came back to Navadvip Dham, and the greatest pleasure to all of the devotees, especially Gadadhar, was to see Chaitanya Mahaprabhu chanting the holy names of Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
जो आनंद उन भक्तों को तब हुआ जब कि चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद वापस आए और वो इस तरह से जो भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे.
At that time, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was practically inseparable from Nityananda Prabhu and Gadadhar Pandit.
उस समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित से अलग नहीं किए जा सकते थे.
One time, Chaitanya Mahaprabhu was weeping in separation from Krishna.
एक बार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम से जो विरह में रो रहे थे.
And he said to Gadadhar, "But where is Krishna? I cannot live without Krishna. Where is he?"
Gadadhar se poochne lage, "Krishna kahan hai? Krishna ke bina main reh nahi sakta."
And Gadadhar Pandit wanted to pacify him, so he said, "He is in your heart, my lord."
Gadadhar Pandit unko shant karna chahte the, to bole ki wo aapke hriday mein hai.
So immediately, Lord Chaitanya took his nails and began to rip open his chest, about to rip open his heart.
चैतन्य महाप्रभु अपने नाखून के द्वारा अपने हृदय को फाड़ने लगे.
At that time, Gadadhar Pandit with great difficulty was trying to hold the hands of Vishvambhar from ripping open his body.
और गदाधर पंडित ने बड़े मुश्किल से निमाई पंडित को रोका कि अपने शरीर को निकालने से.
He wanted to see Krishna in his heart.
क्योंकि अपने हृदय में कृष्ण को देखना चाहते
थे. We should be this anxious to see Krishna.
हमको भी इतना उत्सुक होना चाहिए कृष्ण के दर्शन करने के लिए.
And as Gadadhar was forcibly trying to hold him, he said that just be patient, Krishna will very soon reveal himself to you.
बोलने लगे कि देखो थोड़ा सबर करो अभी थोड़ी देर में कृष्ण आपके सामने दर्शाएंगे.
So by his loving words, Lord Chaitanya was pacified.
उनके प्रेममय शब्द से चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए.
And Sakshi Mata watched this take place.
सखी माता ने ये देखा ये हो रहा है.
And she was thinking, there is no one in the whole world that can protect
protect my son other than Gadadhar Pandit.
He's so sweet and gentle, but he has such love that my son listens to him. He won't listen to anyone else.
So, Sri Mata is saying that Gadadhar Pandit is a true friend because he is the one who can calm him. He will not listen to anyone else. He is very humble and meek.
So, Sri Mata personally requested Gadadhar that please, you always be with my boy Vishwambar Nimai and never leave his side and always protect him from his ecstasies.
So, he was telling them that Gadadhar Pandit was Sri Mata said. कि आप हमेशा जो है उसके साथ रहिए उसको छोड़िए मत और उनकी भावनाओं से आप उनको बचाइए
So Gadadhar Pandit through the day would be dancing through the streets of Navadvip at the side of Sri Chaitanya Mahaprabhu chanting the holy name
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 इस तरह Gadadhar Pandit चैतन्य महाप्रभु
And throughout the entire night, every single night, he was at the side of Sri Mahaprabhu in the house of Sri Vas Pandit, chanting the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So, har ratri ko, puri ratri, Jagadadhar Pandit uske paas rehte hain, is tarah Bhagwan ka naam kirtan karte hain.
When Lord Chaitanya Mahaprabhu saw that there were many people who just wouldn't respect him properly and accept the chanting of the name of Krishna, he decided that for the purpose of delivering the most sinful and the most envious people, he must leave his family and take the order of sannyas.
चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया कि लोक के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि अपने परिवार को छोड़कर संन्यास लें।
In the line of Chaitanya Mahaprabhu, a person only takes to the renounced order so that he could give his whole life in the service of others.
चैतन्य महाप्रभु की लाइन में जो है लोग संन्यास इसलिए लेते हैं कि वो अपना जीवन जो दूसरों की सेवा में अर्पित कर सकें।
So when he made this resolve in his mind, He explained first to Nityananda Prabhu, then to Gadadhar Pandit.
जब उन्होंने ऐसा निश्चय किया, तो पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बताया और उसके बाद गदाधर पंडित को बताया.
When he told Sri Gadadhar that I am going to leave Navadvip and become a sannyasi, Gadadhar Pandit was plunged in an ocean of separation.
जब उन्होंने गदाधर पंडित को बताया कि मैं सन्यास लेने वाला हूं तो ये सुन के वो बिल्कुल जो है एक विरह के सागर में डूब गए
He was trembling in ecstatic love and weeping
वो प्रेम के जो है कांप रहे थे और रो रहे थे
But none of us will be able to survive without your divine company my lord
बोलते हैं आपके संग के बिना हम में से कोई जीवित नहीं रह पाएगा
And in feelings of imminent separation he began to explain What type of religious principle is this to break everybody's hearts?
और वो बताने लगे उनसे ये क्या धर्म का सिद्धांत है सब लोगों के हृदय को तोड़ देना?
And Lord Chaitanya promised Gadadhar Pandit that I will never give up your association.
तो चेतना प्रभु ने गदाधर पंडित को बताया कि आपका संग मैं कभी त्याग नहीं करूंगा.
So on that fateful night, when Chaitanya Mahaprabhu went to Katwa to take sannyas. He brought Nityananda Prabhu, Chandrasekhar, I believe Damodar Pandit, and Gadadhar Pandit. They went and they assisted him in the ceremony of his taking sannyas.
So, उस रात्रि को जब वो कटवा में गए, तो ये जो पांच लोग जो हैं, उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर गए.
And when Lord Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri Dham, Gadadhar Pandit also went to live with him there.
और जब चेतन और जगन्नाथपुरी में गए तो तब भी गदाधर पंडित वहां पर उनके साथ गए
एंड थ्रू आउट द डे एवरी डे अलोंग विद श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित वुड बी डांसिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ पुरी चैंटिंग द होली नेम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
गदाधर पंडित जो है चैतन्य प्रभु के साथ इस तरह जगन्नाथ पुरी के सड़कों में ये नाम संकीर्तन करते हैं.
And Lord Chaitanya Mahaprabhu personally gave Gadadhar Pandit a beautiful deity of the name Tota Gopinath and told him that he should vow to never leave the service of Gopinath.
चैतन्य प्रभु ने खुद जो है उनको एक मूर्ति जिसका नाम है तोटा गोपीनाथ और कहा कि तुम प्रतिज्ञा लो कभी उनकी सेवा का त्याग नहीं करो.
And Gadadhar Pandit, on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he served Lord Gopinath with such love and devotion.
और चैतन्य प्रभु की आज्ञा से बड़े भक्ति से उन्होंने उस मूर्ति की सेवा की.
Actually, it was Radharani personally worshipping Krishna in Jagannath Puri.
तो वास्तव में तो वो राधा रानी हैं जो कि श्री कृष्ण की आराधना कर रही हैं जगन्नाथ पुरी में.
So Chaitanya Mahaprabhu, after some time, he decided to travel.
और थोड़े समय बाद उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है अभी मैं भ्रमण करने वाला हूँ.
And Gadadhar Pandit, he said, "My Lord, if you are traveling, I am going to go with you."
तो गदाधर पंडित बोले कि हे प्रभु अगर आप जाने वाले हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा.
Mahaprabhu wanted to travel to Vrindavan.
चैतन्य प्रभु वृंदावन जाना चाहते थे.
So Gadadhar Pandit began to follow him.
गदाधर पंडित जो है उनके पीछे पीछे चलने लगे.
And Chaitanya Mahaprabhu said, "You cannot do this. You have taken the vow of Chaitra Sanyas. That means you are not allowed to leave the dham where you are worshipping your deity."
तो चैतन्य प्रभु बोले कि तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है. इसका मतलब जिस क्षेत्र में आप हैं उससे जो है बाहर नहीं जा सकते मूर्ति को छोड़कर.
And Gadadhar Pandit said, "But you are none different than my deity Gopinath."
तो बोले कि आप तो मेरी मूर्ति से अभिन्न हैं.
He is standing and you are walking.
वो खड़े हो और आप जा रहे हैं.
That is the only difference.
यही एक अंतर है.
And by worshipping you, I am fulfilling millions of lifetimes of worshipping Gopinath.
और आपकी आराधना करने से लाखों जन्म गोपीनाथ की आराधना करने बराबर.
So I will go with you wherever you go.
इसलिए मैं वही जाऊंगा जहां आप जाएंगे.
But Lord Chaitanya, knowing that Gadadhar did take this vow, understood that it would be not good for the dignity of the image of his followers, for his disciples to just break these vows.
चैतन्य प्रभु ने देखा कि इसने प्रतिज्ञा की है और उनके अनुयायी के लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर वो इस तरह से प्रतिज्ञा को जो है तोड़ देंगे.
So at one point they came to a river.
चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचे.
And Gadadhar Pandit was still following behind Sri Chaitanya.
गदाधर पंडित पीछे पीछे चल रहे थे चैतन्य महाप्रभु.
And to cross the river they had to get on a boat.
और वो नदी पार करने के लिए एक नाव पर जाना था.
So महाप्रभु got on the boat.
महाप्रभु ये नाव पर बैठ गए.
And as Gadadhar Pandit was about to board the boat, Mahaprabhu said, "No, you cannot come."
और जैसे ही वो गदाधर पंडित आ रहे थे नाव पर, चैतन्य प्रभु ने रोक दिया कि आप नहीं आ सकते.
You must go back and follow your vows by worshipping Tota Gopinath.
आप जाओ और तोटा गोपीनाथ की आराधना करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो.
And as the boat started drifting away, Gadadhar Pandit, in the anguish of separation, feeling, what is my life? What is Jagannath Puri? What is anything without Krishna?
और वो जो इस तरह सोचने लगे कि क्या है ये बिना कृष्ण के जगन्नाथ पुरी क्या है?
Who was appearing so beautifully as Lord Gauranga?
जो कि श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में.
So in utter distress of separation, he just held his hand on his head and he fell to the ground unconscious.
और बिल्कुल जो इस तरह विरह की भावना में अपने हाथ को माथे पर रखते हुए वहीं पर बेहोश हो गए.
And when he finally came to consciousness again, he was weeping and trembling in separation from the Lord.
जब वो चेतना में आए तो फिर से रो रहे थे भगवान के विरह के कारण.
And the devotees somehow or other tried to pacify him and bring him back to the temple of Sri Tota Gopinath.
किसी तरह से भक्तों ने उनको समझाया और उसको वापस जो है तोटा गोपीनाथ मंदिर में ले आए.
On another occasion, Sri Gadadhar Pandit, after Chaitanya Mahaprabhu left this world, Mahaprabhu left the world in the presence of Gadadhar.
एक और अवसर है जब चैतन्य प्रभु धरती छोड़ गए. चैतन्य प्रभु ने जो है ये शरीर छोड़ा गदाधर पंडित की उपस्थिति में.
Every day, Lord Chaitanya would come to the Tota Gopinath temple to hear Gadadhar Pandit recite the Srimad Bhagavatam.
रोज चैतन्य महाप्रभु तोटा गोपीनाथ मंदिर में आते थे और गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत का पाठ सुनते थे.
Gadadhar Pandit was considered the foremost speaker of the Bhagavatam in all the world.
गदाधर पंडित को ऐसा माना जाता कि पूरे दुनिया में जो है सबसे श्रेष्ठ भागवतम के वक्ता हैं.
He would recite and explain the slokas of Bhagavatam with such divine realization and such intimate, infinite, pure devotion.
वो भागवतम के श्लोक को जो है बहुत सुंदर जो है भक्ति भावना से गाते थे.
So each day, Chaitanya Mahaprabhu would go there with his associates, and they would hear the beautiful Bhagavad Katha from Gadadhar Pandit, and they would have wonderful kirtan, chanting the holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इस तरह से रोज भागवत अपने सहचरों के साथ जितना रोज भागवत सुनने जाते और प्रभु का नाम संकीर्तन करते.
But on this particular day, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he opened the doors to where, the doors were open. He went right into the deity room where Tota Gopinath was standing. And he closed all the doors.
उस दिन जो है वो भक्त चेतना प्रभु अंदर चले गए और सारे दरवाजे जो है तोटा गोपीनाथ के सब दरवाजे बंद कर दिए.
And meanwhile the kirtan continued.
और कीर्तन चालू था उस समय.
All of a sudden, every devotee in the kirtan felt the ecstasy of total spiritual distress and separation in their hearts.
अचानक सब भक्तों को ऐसा लगा कि आध्यात्मिक रूप से दुख और विरह की अनुभव अपने हृदय में होने लगे.
And they could understand that our Lord must have left us.
तो वह समझ गए कि हमारे जो भगवान हैं वो जरूर हमको छोड़कर चले गए होंगे.
So headed by Gadadhar Pandit, who was the pujari for that temple, he opened the doors and found that Sri Chaitanya Mahaprabhu had left the world.
और उन्होंने जो दरवाजे खोले और उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु इस धरती को छोड़कर चले गए.
As the sun rises in the morning and sets in the evening, similarly the Lord appears in this world to perform his function of re-establishing the principles of religion, annihilating the demons and protecting the devotees, and then the Lord disappears from this world.
जिस तरह से सूर्य सुबह उदय होता है और बाद में अस्त हो जाता है, उसी तरह से भगवान साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, फिर चले जाते हैं.
Chaitanya Mahaprabhu was the Yuga Avatar. He came to establish the divine process of loving service to the Lord through the chanting of his holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu yuga avatar hain aur wo unhone ye yuga dharma sikhane ke liye, naam sankirtan sikhane ke liye dharti par aaye.
And he had already saturated the world with Hari Nam Sankirtan and completely empowered his associates to continue this great message. So by his own sweet will, he entered into the body of the deity of Tota Gopinath to disappear.
और चेतन महाप्रभु ने सब जगह पे नाम संकीर्तन फैला दिया था, अपने प्रतिनिधि को शक्ति दे दी थी और अपनी इच्छा से ही जो है वो तोटा गोपीनाथ के शरीर में प्रवेश कर गए.
Can imagine the situation of all the Vaishnavas.
आप सोच सकते हैं कि वैष्णवों की क्या स्थिति होगी.
Practically all of his intimate associates, within days, weeks, or month, they all died of separation.
और कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जो है सब जो है विरह के कारण मृत्यु हो गई उनकी.
They could not eat. They could not sleep. They were just weeping, weeping. They were just crying themselves to death in separation from the Lord.
वो कुछ खा नहीं सके, सो नहीं सके, सिर्फ रोते गए और इस तरह से विरह में मरते जा रहे थे.
युगायतम नमेशिना चक्षुषा प्रवृषायतम सुन्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे. That the world is a dreary void without the beautiful vision of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन बिना ये पूरी दुनिया जो है शून्य प्रतीत होता.
So Gadadhar Pandit, he was slightly younger than Lord Chaitanya, which means at that time he was about 48 years old.
तो गदाधर पंडित जो चेतना उसे थोड़े से जो है छोटे थे उम्र में, इसका मतलब उनकी उम्र करीब 48 वर्ष थी.
Which is more or less a young man.
इसका मतलब वो तो एक नौजवान व्यक्ति है.
And Mahaprabhu, you should understand that Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Gadadhar Pandit, they never aged. They always looked youthful, because they were completely absorbed in spiritual ecstasy.
हम जानते हैं कि चेतना प्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित जी कभी बूढ़े नहीं होते क्योंकि हमेशा जो आध्यात्मिक भावना में रत रहते हैं.
When they were chanting and dancing together, their beauty was ever youthful. It was not subjected to the laws of nature or the power of time.
जब वो नाचते थे और कीर्तन करते थे तो उनकी सुंदरता जो है वो किसी समय के प्रभाव से बदलती नहीं थी.
In this way, all innocent souls, their hearts were captivated with beauty and love by seeing the wonderful dancing and chanting of the Lord with his devotees.
He says, Hare
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
But after Chaitanya Mahaprabhu left, Gadadhar Pandit, he could not eat, he could not sleep, he only wept, and his heart was burning in separation from the Lord.
और जितना रुक जाने के बाद वो कुछ खा नहीं सके सो नहीं सके और उनके विरह से जो उनका हृदय जो है जल रहा था.
And in this ecstasy of separation, every moment he was aging years.
और इस विरह के कारण जो है वो एक एक क्षण भी जो है सालों के समान जो है वो बूढ़े हो रहे थे.
And every day he was appearing to be years and years older than the day before.
और हर दिन ऐसा लग रहा था कि वो एक दिन में कई साल ज्यादा जो है बूढ़े हो गए हैं.
He became so old and invalid, feeling separation from the Lord, that he didn't even have the strength to dress the deity of Gopinath properly.
और वो इतने ज्यादा वृद्ध हो गए कि वो उनके पास शक्ति भी नहीं रही कि गोपीनाथ के जो है श्रृंगार कर सके.
Yet he made a vow that he would take care of this deity for his whole life.
उन्होंने व्रत लिया था कि पूरे जीवन भर उस मूर्ति का ख्याल रखेंगे.
It is explained that one time he was trying to put the garland on Gopinath, but to get it around his head, didn't even have the strength to hold the garland, to lift it up that high.
एक बार वो गोपीनाथ मूर्ति को माला पहनाने जा रहे थे, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि माला को इतना ऊंचा करें कि वो उनको गले में पहना सके.
But Lord Chaitanya, who was within the body of Gopinath, in order to make life easier for Gadadhar Pandit, as Gadadhar was trying to put the garland and reaching and unable to lift it so high, the deity sat down with crossed legs so that Gadadhar Pandit could easily put the garland and crowns and everything else on him.
और उनको उनकी सहायता करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो कि मूर्ति में ही है वो जो है मूर्ति जो है नीचे बैठ गई जिससे कि वो उनके अच्छा श्रृंगार कर सके.
And to this very day, if you go to Jagannath Puri, to the Toto Gopinath temple, you will see perhaps the only deity like this in the whole world. You'll see Krishna playing his flute, sitting down with crossed legs.
और आप एक ही जगह है दुनिया में आप देखेंगे कि भगवान की मूर्ति है कि उस तरह से घुटने मोड़ के बैठे हुए हैं और मुरली बजा रहे हैं भगवान कृष्ण.
Just to show the love of the Lord for his devotee.
ये बताने के लिए कि भगवान का भक्तों से कितना प्रेम है.
Meanwhile, Gadadhar Pandit, somehow or other, by his love for Krishna, he was existing. And one great devotee named Srinivasa Acharya, he was from a village in Bengal called Jajigram. And since his father was a very great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Srinivas, who was then a young man, his heart's longing was always to see Lord Gauranga.
एक श्रीनिवास आचार्य करके एक भक्त हैं जो कि जाजी ग्राम से हैं और उनके मन में बहुत इच्छा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के.
So he left Jajigram to go on a pilgrimage to Jagannath Puri to have the beautiful darshan and surrender his life at the feet of Sri Gauranga Mahaprabhu.
इसलिए जाजीग्राम छोड़कर जगन्नाथ पुरी में आए जिससे कि अपना जीवन को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पण कर सके.
But on the way, he heard the news. People were walking from Jagannath Puri toward Bengal, weeping and crying. He said, "What is wrong?" They said, "You have not heard? Sri Gauranga Mahaprabhu has disappeared from this world."
रास्ते में उन्होंने देखा लोग रो रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है तो उन्होंने बोला कि कारण यह है कि चैतन्य महाप्रभु धरती से चले गए.
So Srinivas Acharya fell to the ground unconscious.
यह सुनकर श्रीनिवास आचार्य धरती पर बेहोश गिर पड़े.
and he decided, Gauranga Mahaprabhu is gone. This world is a dreary void. I will fast till death. But then Chaitanya Mahaprabhu appeared to him in a vision. And told him, you should not take your life. You should go to the Tulta Gopinath Mandir in Puri and you should study Srimad Bhagavatam from my most intimate associate, Sri Gadadhar Pandit.
And
so Srinivas Acharya, he went to the lotus feet of Gadadhar Pandit and surrendered his life.
And
he explained that the Lord has given me this order that I should hear Srimad Bhagavatam for you. Gadadhar Pandit, who was in such an ocean of grief, he went and picked up his only copy of Srimad Bhagavatam and he said, since the Lord has left the world, I have been weeping so much that the whole Srimad Bhagavatam is covered with tears.
And
because of these tears of love, every single letter of the alphabet that was in the Bhagavatam was completely merged in tears. So no one could read it. So he said, if you want to study Bhagavatam under me, you have to first find a Srimad Bhagavatam we can read.
अगर आप मेरे से भागवत सीखना चाहते हैं तो पहले एक भागवत ले आओ जो हम पढ़ सकें।
So in those days, you know, there were no printing presses.
और उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी।
If you wanted a Srimad Bhagavatam, you had to find someone to copy down all 18,000 verses by hand.
अगर आपको श्रीमद् भागवत चाहिए होगा तो आपको चाहिए कोई व्यक्ति जो कि सब 18,000 श्लोकों को लिख सके।
Which is a feat that took many months.
और सब कई महीने लग जाते हैं।
So Srinivas Acharya went back to Bengal. He went to a place near Navadvip called Srikhanda, where he petitioned someone to copy down one of the scribes the Srimad Bhagavatam for him.
तो वहाँ श्रीकांड गए और वहाँ से उन्होंने किसी से निवेदन किया कि आप मुझे श्रीमद् भागवत की कॉपी बना कर दीजिए.
And after many months, he obtained his Srimad Bhagavat copy.
और कई महीनों के बाद उन्हें श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ.
Just see how we take things so for granted. Our devotees are selling entire sets of Srimad Bhagavatam and we're not even willing to pay a few thousand rupees for it.
हमारे भक्त लोग जो है बेच रहे हैं और भागवत का पूरा सेट और हम उसके लिए 1,000 या 2,000 भी नहीं दे सकते.
How cheaply we take this most precious treasure.
ये इतनी बड़ी संपत्ति को हम बहुत सस्ता समझ लेते हैं.
And even if we have it, how much is it just sitting on the shelves and how much are we reading it? We should be as eager as Srinivas Acharya to obtain the Bhagavatam and to read it.
And
to study it under the representatives of Gadadhar
Pandit.
If we have this type of eagerness, we will easily attain Krishna consciousness.
अगर हमारे अंदर ये उत्सुकता है, तो हम बड़े आसानी से कृष्ण भावना को प्राप्त कर लेंगे।
So he began the long walk from Jajigram, Srikhanda area back to Jagannath Puri.
तो वो जाजीग्राम से जब वापस जगन्नाथ पुरी की तरफ चल पड़े।
But just as he was approaching Shri Purushottam Kshetra, Jagannath Puri, he heard the news that Gadadhar Pandit, in separation from the Lord, just could not maintain his life.
He has
disappeared from the world. So Srinivas Acharya again fell unconscious. And he decided, now for sure I will take my life. I cannot live without these great souls. This world is nothing but a disturbance without Krishna and his devotees. Just see the difference between us. We don't have time to come and see Krishna and his devotees because we're so busy with the affairs of the world.
देखो हमारे में और इनमें कितना अंतर है. हम तो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, हमको भगवान के दर्शन या भक्तों को दर्शन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता.
But the great devotees, they see that without the association of Krishna and devotees, this whole world is nothing but a painful, terrible cause of suffering.
और भगवान के भक्त ये सोचते हैं कि जो है भगवान के बिना और भक्त के दर्शन के बिना ये पूरी दुनिया जो है और कुछ नहीं है, सिर्फ दुखों का स्थान है.
Raghunath Das Goswami also was feeling such pangs of separation.
रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसे विरह का जो है अनुभव हो रहा था.
When he was living at Radha Kund on the foot of just close to Govardhan Hill, sometimes in feelings of separation from Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and Garadhar Pandit and Swarup Damodar Goswami and these associates of the Lord, in feeling separation from them, he would weep and he would cry. He wrote in one prayer that in separation of Sri Gauranga Mahaprabhu and his associates, when I look at Radha Kund and Shyama Kund, they appear like tigers about to devour me.
रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसा ही विचार आते थे. वो जब गोवर्धन के जो है नीचे राधा कुंड में रहते थे और उस समय चैतन्य महाप्रभु और सब सहचर स्वरूप दामोदर सब चले गए, तब वो कह रहे थे कि जब मैं राधा कुंड और श्याम कुंड को देखता हूँ तो मेरे को ये जो है ये चीते के समान नजर आते हैं कि जो मुझे खाने वाले हैं.
When I see the most beautiful, wonderful form of Govardhan Hill in separation from the Lord, Govardhan Hill appears like a terrible, massive python about to devour me.
और जब मैं गोवर्धन पर्वत को देखता हूँ विरह के कारण, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा अजगर है जो कि मेरे को खा जाने वाला है.
In this way, a devotee sees absolutely nothing in this world with any meaning, with any pleasure. He sees the whole world as being a terrible thing without the presence of Krishna.
भगवान की उपस्थिति के बिना भक्त सोचता है कि ये सब कुछ जो बिल्कुल बेकार है और दुखदाई है.
So Srinivas Acharya decided, I will take my life. Although he was only a young man, hardly 20 years old.
श्रीनिवास आचार्य की उम्र उस समय सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं बस अपने शरीर का अंत कर दूंगा.
But in separation, he fell unconscious.
वो विरह में जब फिर से बेहोश हो गए.
And then Gadadhar Pandit appeared to him in a vision.
और फिर गदाधर पंडित उनको जब प्रकट हुए उनके दर्शन.
Gadadhar Pandit said, "You should not take your life."
उन्होंने बोला कि ऐसा आप मत करिए.
You should go to Vrindavan and you should study Bhagavatam under Rupa and Sanatan Goswami.
बोले आप वृंदावन में जाइए और रूप गोस्वामी के निर्देश में भागवत का अध्ययन करिए.
So then he went back to Bengal and he performed certain duties to the Vaishnavas there for some time. And finally, after a long time, he was able to go to Vrindavan with the blessings of the Vaishnavas. And when he got to Mathura, he heard the news that Rupa and Sanatan had left the world in separation of Lord Chaitanya.
फिर अंततः जब वो मथुरा के पास पहुंचे तब उनको समाचार मिला कि रूप और सनातन भी जो है इस धरती को छोड़कर चले गए.
He decided, I will drown myself in Jamuna.
उन्होंने निश्चय किया कि अब यमुना जी में मैं अपने को डुबो के मर जाऊं.
But before he could do that, he fell unconscious in separation. And Rupa and Sanatan appeared to him in a vision. And told him that you should study Bhagavatam under Jiva Goswami. So then he studied Srimad Bhagavatam under Jiva Goswami.
फिर उन्होंने अंततः जीव गोस्वामी के निर्देश में भागवत अध्ययन.
So this is the nature of the love of the Lord for his devotees. And here we find Maharaj Yudhisthira so wonderfully also exhibiting these qualities.
ये भक्तों और भगवान का प्रेम होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भी कैसा यही प्रेम दिखला रहे हैं.
Of course, we cannot be like the sahajas and artificially, immaturely imitate the ecstasies of these devotees.
हम सहजे की तरह नहीं बन सकते कि ऐसे जो है लोगों के इतने महान भक्तों की नकल करें हम.
But by proper sadhana and proper cultivation of consciousness, we can strive to develop these sentiments.
हम अच्छी साधना करने के द्वारा हम इन भावनाओं को जो है बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं.
the sentiment that is most wonderfully being manifest here for our instruction is how we should cultivate the awareness that Krishna and Krishna's service and the association of Krishna's devotees is the only thing of any reality or value in our lives. Everything else is an illusion.
हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण कृष्ण की सेवा और यही चीज़ है जो कि है ना इसके अंदर कोई कीमत है इसके अलावा सब जो है ये माया ही है
This whole material world is an illusion because people are striving to gain so many things that have nothing to do with Krishna.
ये पूरी दुनिया एक भ्रम है क्योंकि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जिनका कृष्ण से कुछ लेना देना ही नहीं है
There are millions of such examples in the scriptures of this consciousness.
ऐसी चेतना के लाखों उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं.
King Pratapa Rudra was willing to give up being king and be a beggar if he could meet Lord Chaitanya for even 1 minute.
राजा प्रताप रुद्र जो है राजपथ का त्याग करके भिखारी बनने के लिए तैयार थे अगर एक मिनट के लिए चेतना प्रभु को मिल सकते थे.
What is the use of the things of this world?
इस दुनिया की चीजों का क्या फायदा है?
It is all bondage without Krishna.
बिना कृष्ण के सिर्फ बंधन ही है.
But how to develop this consciousness? First of all, we have to want this consciousness.
ये चेतना हमारे अंदर कैसे पैदा हो? पहले हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमें मिले ये चेतना.
And we have to be willing to make sacrifices for this consciousness.
और उसके लिए हमें त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए.
And the acharyas, our spiritual master, is teaching us how we can cultivate this consciousness.
और ये चेतना हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ये आचार्य हमें सिखला रहे हैं.
And it's very simple.
और ये बहुत सरल है.
But it has to be applied with great sincerity and great attention.
लेकिन इसको बड़े ध्यान से अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा.
First of all, we must honor and worship the association of devotees.
पहली चीज़ है कि भक्तों के संघ का आदर करना और उसकी पूजा करना.
And we must see that without the association of devotees, there's no reason to live.
हमें देखना चाहिए कि भक्तों के संघ बिना जीने का कोई फायदा ही नहीं है.
Narottam Das Thakur wrote a beautiful song in separation from departed Vaishnavas.
Narottam Das Thakur ne bahut sundar bhajan likha hai.
And in this song he is praying that in the separation of Vaishnavas I simply am breaking my head against a stone in severe pain.
Woh bolne ki bhakton ke viray ke karan main apne jo mathe ko jo hai patthar pe ragad raha hu dard ke karan.
And similarly Lord Chaitanya Mahaprabhu, in his dialogue with Ramananda Rai, he said, "What is the greatest misery in all of creation?"
Chaitanya Mahaprabhu Ramananda Rai ka samvad hota hai. Usme Chaitanya Mahaprabhu puchte hain ki dunya mein sabse bada dukh kya hai?
And Ramananda Rai said, "There is only one misery in the entire creation."
Wo bole puri srishti mein ek hi bada jo hai dukh hai.
I don't know any other misery except one.
Bas uske alawa mujhe aur kuch nahi maloom hai.
To be without the association of your devotees.
Aapke bhakton ke virah mein rehna yahi sabse bada dukh hai.
So we must desperately take shelter of the satsang of Vaishnavas.
हमें निस्सहाय भावना से वैष्णवों के सत्संग का आश्रय लेना चाहिए.
This is of absolute importance.
ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है.
Second of all, we must, in that association, we must submissively hear the instruction given by Guru and Krishna.
और इस सत्संग में हमें गुरु और कृष्ण की आज्ञाओं का श्रवण करना चाहिए.
And to follow the four regulative principles strictly and to regularly discipline ourselves through sadhana bhakti is the greatest instruction and most essential instruction for aspiring devotees.
Sadhana bhakti ke niyam ka char palan karna yahi sabse zyada mahatvapurna aagya hai bhakti ke liye.
Therefore we must chant fixed number of rounds every day.
इसलिए जो नियम बनाया है जितने माला करना है वो सबको रोज जप करना ही चाहिए माला के ऊपर
इवन चैतन्य महाप्रभु although he was krishna himself it is explained that when he was traveling through south india his devotees said you need one servant because in one hands they called it the knotted rope but he had his mala on one hands you're chanting on your mala and on the other hand you need to count the rounds that you chant so you'll need someone to carry your water pot
bole ki ek haath mein jo hai aap mala rakhte hain dusre haath mein aap ginte hain ki kitni mala hui hai isliye aapko koi aur dusra vyakti chahiye kamundal uthane ke liye
Sri Chaitanya Mahaprabhu who was krishna himself in the mood of Sri Radhika Rani, taking the role of a devotee taught us that everyone, whoever you may be, you must chant a fixed number of rounds of the Hare Krishna mantra every day.
I
remember when Srila Prabhupada, one year he was at New Vrindavan. This was in 1976. And every day I was living at the Brahmachari Ashram, which was on a mountain, and I had to climb down one mountain, and then I had to cross over a small river, then I had to climb up another mountain, then I had to walk some distance to see him every day. And there was no paths in the mountain, very steep like a cliff. You'd just be almost falling and hanging on to trees as you were calling down. Because to go by the road would take so long, it would take several hours. There was just a dirt road, not even a dirt road, mud road. But to go by that, you have to go way down and then way up. So it would take about 3-4 hours. But because I was milking cows and worshiping the deities, I had to finish offerings to go to see Prabhupada. So the only way I could get on time is I had to go down the cliff, cross the river, and go up another cliff.
महाराज बतला रहे हैं कैसे जब वो न्यू वृंदावन में थे उस समय पुजारी करते थे और गौओं का ख्याल रखते थे और उस समय प्रभुपाद जी आए हुए थे तो उनसे मिलने के लिए क्योंकि उनको जल्दी पहुंचना होता था तो वो लंबा रास्ता जो है वो तो मिट्टी का रास्ता था लेकिन उससे ज़्यादा वो एक पर्वत से नीचे जाते हुए फिर नदी पार करते दूसरा पर्वत चढ़ते थे और कई बार पेड़ों को पकड़ते हुए गिरने से बचते इस तरह से बड़ी तकलीफ से वहाँ पर पहुँचते थे
So I did this twice a day, every day, to hear Prabhupada.
और प्रभुपाद जी सुनने के लिए रोज दिन में 2 बार इस तरह करते थे
I'd be all muddy when I'd get to see him and all dirty and everything.
But
he appreciated my endeavors. And for Bhagavatam class, and then in the evening he would speak for several hours.
So one
day when I was going up and down, my counter beads on my japa mala that counts how many rounds, somehow or other they broke and fell off in the forest.
And
there was really no place to get counter beads in those days.
So
I was just in my mind remembering how many rounds I was chanting, and I was chanting 16 rounds.
Well,
one day, I was sitting on that evening, some days after I lost my counter beads, and I was sitting at Srila Prabhupada's lotus feet as he was giving lecture to there was only about 15-20 people allowed to come every night, but I was allowed to come every night. And Prabhupada was speaking, and as he was speaking about the importance of chanting Hare Krishna, I was thinking, actually, I don't even know how many rounds I did today. I think I chanted 16 rounds, but I'm really not sure.
तो प्रभुपाद जी बतला रहे थे कैसे जप करना और गिन के जप करना कितना महत्वपूर्ण है और महाराज मन में सोच रहे थे कि मैंने तो गिना नहीं मेरे को मालूम नहीं शायद तो 16 माला हो गए हैं शायद नहीं हुए हैं ये मुझे पक्का मालूम भी नहीं है
And I didn't say anything. I was just thinking like this.
तो उन्होंने कुछ बोला नहीं खाली से मन में सोच रहे थे कि मैंने 16 माला किए हैं कि नहीं सोच रहे
And Prabhupada was sitting back at that time. He was just waiting for some question.